अध्याय 8। कोढ़ी को स्वास्थ्य लाभ। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने ये कहते हुए उन्हें दंडवत किया,
प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं।
ईसा ने हाथ बढ़ाकर ये कहते हुए उसका स्पर्श किया,
मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ।
उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उससे कहा,
सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए।
शतपति के नौकर को स्वास्थ्य लाभ। ईसा कफरनाहुम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे ये निवेदन किया,
प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वो घोर पीड़ा से रहा है।
ईसा ने उससे कहा,
मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा।
शतपति ने उत्तर दिया,
प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं, जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वो जाता है और दूसरे से आओ तो वो आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वो यह करता है।
ईसा यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा,
मैं तुम लोगों से कहता हूं, इसराइल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहीम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज के भोज में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे।
शतपति से ईसा ने कहा,
जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए।
और उस घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। पेत्रुस की सास। पेत्रुस के घर पहुंचने पर ईसा को पता चला कि पेत्रुस की सास बुखार में पड़ी हुई है। उन्होंने उसका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा और वह उठकर उनके सेवा सत्कार में लग गई। बहुतों को स्वास्थ्य लाभ। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी ईसायस का ये कथन पूरा हुआ,
उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया।
शिष्य बनने की शर्तें। अपने को भीड़ से घिरा देखकर ईसा ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर ईसा से बोला,
गुरुवर आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा।
ईसा ने उससे कहा,
लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए
सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं।
शिष्यों में किसी ने उनसे कहा,
प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए।
परंतु ईसा ने उससे कहा,
मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने।
आंधी को शांत करना। ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु ईसा तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा,
प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं।
ईसा ने उनसे कहा,
अल्पविश्वासियों डरते क्यों?
तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे,
आखिर ये कौन है?
वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं।
गेरासा के अवधूत ग्रस्त। जब ईसा समुद्र के उस पार गदरेनियों के प्रदेश पहुंचे तो दो अवधूत ग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आए। वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था। वे चिल्ला उठे,
ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या?
क्या आप यहाँ समय से पहले हमें सताने आए हैं?
वहां कुछ दूरी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। अवधूत ये कहते हुए अनुनय विनय करते रहे,
यदि आप हमको निकाल ही रहे हैं तो हमें सुअरों के झुंड में भेज दीजिए।
ईसा ने उनसे कहा,
जाओ।
तब अवधूत उन मनुष्यों से निकलकर सुअरों में जा घुसे और सारा झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। सुअर चराने वाले भाग गए और जाकर पूरा समाचार और अवधूत ग्रस्तों के साथ जो कुछ हुआ ये सब उन्होंने नगर में सुनाया। इस पर सारा नगर ईसा से मिलने निकला और उन्हें देखकर लोगों ने निवेदन किया कि वो उनके प्रदेश से चले जाएं।